बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम सत्य वचन कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से विलाप गीत नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओं, इससे पूर्व की आज के इस बाइबल अध्ययन को आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक गीत।
तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे सन्मुख आने के लाया मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सन्मुख आने के लाया मैं कदापि योग्य न था। पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया, इसलिए मसीहा होठों से।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयार हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से विलाप गीत नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका लेखक यर्मिया है और जो एक रोने वाले भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि विलाप गीत एक शोक गीत है और इस पुस्तक में 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय एक शोक गीत है। तो हमने अब तक 2 अध्याय का अध्ययन कर लिया है, अर्थात हम 2 शोक गीत देख चुके हैं। आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और अध्याय 3 से अध्ययन को आरंभ करें। तो हमारा विषय है तीसरा शोक गीत। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय इब्रानी भाषा की वर्ण व्यवस्था के आधार पर तैयार की गई है। इब्रानी के 22 अक्षरों के अनुसार प्रत्येक पद प्रत्येक अक्षर से आरंभ होता है, परंतु इस अध्याय में 66 पद हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक अक्षर के 3 पद हैं। आइए आप मेरे साथ पढ़िए विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 से 4 पद। लिखा है, उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूं, वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं अंधियारे में ले चलाता है। उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरोध उठता रहता है। उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया है और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। यहां पर हम देखते हैं कि यर्मिया ने कष्ट देखे और झेले भी थे। यरूशलेम की चिंताओं ने उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला था। देश के विनाश को देखकर यर्मिया निश्चिंत नहीं था। वह उनसे यह नहीं कह रहा था, मैंने तो पहले ही कहा था। सच तो यह है कि उसका दिल टूट चुका था। उसकी प्रतिक्रियाएं हमें परमेश्वर की भावनाओं को समझने में सहायक हैं। परमेश्वर अलग नहीं है, वह अपनों के साथ में ही है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आप कैसे भी कष्टों में हैं, स्मरण रखें कि वह आपके साथ में है। मेरे बहुत सारे मित्र जो बीमार अवस्था में हैं, जो कष्ट और परेशानी में हैं, आप जानें कि परमेश्वर इस समय भी आपके साथ में है। वह आपकी चंगाई को चाहता है। आप उसकी ओर फिरें और वह आपकी सहायता करेगा। विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसके 21 से 24 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, इसीलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। मेरे प्रियो, यदि मुझे विलाप गीत के इन 3 अध्यायों को एक शीर्षक देना हो तो वह होगा, आने वाला कल जब बीता हुआ कल हो जाए। यर्मिया अब पिछले वर्षों पर विचार करता है। उसने यरूशलेम के दंड की भविष्यवाणी की थी। वह उस नगर के मलबे पर बैठा यह विलाप गीत लिख रहा है। 5 शोक गीतों को या शोक गीतों में यही एक प्रकाशमान समय है। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। जी हां, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर के अति कठोर दंड के बाद वह परमेश्वर की दया का हाथ देखता है। यदि परमेश्वर दयावान न होता तो वे पूर्ण रूप से विलोप हो जाते। क्या यहूदा की यह मुक्ति उनकी योग्यता के अनुसार थी? नहीं, यह केवल परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वह उससे एक महान जाति उत्पन्न करेगा। यही वह जाति थी। उसने मूसा से प्रतिज्ञा की थी कि वह उन्हें उस देश में ले जाएगा। उसने यहोशू से प्रतिज्ञा भी की थी कि वह उन्हें वहां स्थापित करेगा। उसने दाऊद से प्रतिज्ञा की थी कि उसके वंश से आने वाला उसके सिंहासन पर सदा काल तक राज्य करेगा। भविष्यद्वक्ताओं ने सब ने यही कहा था कि वह उनका सर्वनाश तो नहीं करेगा, परंतु उन्हें पाप का दंड अवश्य देगा। जी हां, परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने उन्हें दंड दिया, परंतु उनका सर्वनाश नहीं किया। एक विश्वासी जनसमूह बचा रहेगा जो फिर से एक महान जाति बनेगी। मेरे मित्रों, आइए अब हम अध्याय 4 में आते हैं, जिसका विषय होगा 4th शोक गीत। यह गीत एक प्रकार से चिंतन है। यरूशलेम के मलबे पर बैठकर वह नगर के महाविनाश और प्रजा के बंदी बनाए जाने तथा ले जाए जाने पर विचार कर रहा है। यह ऐसा भयानक चित्रण है कि मैं ऐसा विनाशकारी दिन का संदेश देना न चाहूंगा, परंतु हमें इस तथ्य को स्वीकार करना है कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर और धर्मी परमेश्वर है। जी हाँ, परमेश्वर पाप का दंड देता है और वह उसका धार्मिकता का काम है। यहूदा को पूरा दंड नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर दयावान है। हबक्कूक कहता है 3 अध्याय उसके 2 पद में, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। परमेश्वर दया दिखाना कभी नहीं भूलता है। परमेश्वर की प्रजा के लिए सदा ही मुक्ति का मार्ग उपलब्ध है, यदि वे परमेश्वर के अनुरूप चाल चलें। विलाप गीत 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। यर्मिया सियोन के युवकों की तुलना सोने से करता है। यहूदा के ये उत्तम युवक जो कभी सोना थे, अब मिट्टी हो गए हैं, वे मिट्टी के पात्रों की नाई चूर चूर हो गए। युद्ध का यही एक भयानक परिदृश्य है। देश के उत्तम युवा खो दिए जाते हैं। मैं एक विश्वासी मनोवैज्ञानिक को कहते सुना, आप जब सुबह जागते हैं तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर कहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। पवित्र जनों में से अधिकांश से यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं से बहुत प्रेम करते हैं। पौलुस कहता है कि हमें अपने आप को आवश्यकता से अधिक बड़ा नहीं समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम समझ पाते हैं कि हम मिट्टी के पात्र ही हैं। तीमुथियुस को लिखे दूसरे पत्र में पौलुस विश्वासियों की तुलना मिट्टी के पात्रों से करता है, परंतु मुख्य बात यह नहीं कि पात्र किससे बना है, मुख्य बात तो यह है कि वह कैसे काम में लिया जा रहा है। क्या हम प्रभु के उपयोग के लिए हैं या अपने उपयोग के लिए हैं? काना नगर में विवाह उत्सव में प्रभु यीशु ने उन पुराने पात्रों में जल मंगवाया। वे पात्र एक कोने में रखे थे। उसने उन पुराने पात्रों को दाखरस पिलाने के काम में लिया। वह उन्हें काम में ले पाया, परंतु पानी भरने के बाद। जल अर्थात पानी परमेश्वर का वचन है। हम पुराने पात्र हैं। यदि परमेश्वर के वचन से भर जाएं, तो प्रभु हमें भी काम में लेगा। यहूदा के युवक परमेश्वर की सेवा में नहीं थे, अतः वे चूर चूर कर दिए गए। कैसा यह त्रासपूर्ण दृश्य है। विलाप गीत 4:4 में लिखा है, दूध पीते बच्चों की जीव प्यास के मारे तालू में चिपट गई है। बाल बच्चे रोटी मांगते हैं, परंतु कोई उनको नहीं देता। मेरे मित्रों, नबूकदनेस्सर का घेराव बहुत बड़ा और बहुत भयानक था। नगर के भीतर लोग कष्ट उठा रहे थे। समर्पण न करने के कारण उनके शिशु भूख से मर रहे थे। उन्हें दोष मत दो। आज गर्भपात लोग करते हैं, शिशुओं की हत्या करते हैं। मेरे मित्रों, आप गर्भपात ना कराएं, यह परमेश्वर की योजना नहीं है। यहां पर बच्चे भूख से मर रहे थे। विलाप गीत 4:5 में लिखा है, जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं। जो मलमल के वस्त्रों में पले थे अब घूरों पर लेटते हैं। वे सुख सुविधा में रहते थे, परंतु इस समय उनके बाजार खाली पड़े थे। उनका सब कुछ, सब सुख समाप्त हो गया था। कुछ भी नहीं बचा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बाजारों में सामान ना हो, घरों में बिजली ना हो, देश में पेट्रोल ना हो, तो क्या होगा? हम हताश हो जाएंगे, चीख पुकार मचा देंगे। यरूशलेम की यही दशा थी। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया था उनके कामों का। विलाप गीत 4:6 में लिखा है, मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम के पाप से भी अधिक हो गया है, जो किसी के हाथ डाले बिना भी क्षण भर में उलट गया था। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को दंड दिया था, परंतु यरूशलेम का दंड अधिक कठोर था। ऐसा क्यों? क्योंकि यरूशलेम का पाप सदोम और अमोरा के पाप से बड़ा था। सदोम और अमोरा जो दो नगर थे, एक भयानक पाप समलैंगिकता के कारण नष्ट कर दिए गए थे। परंतु उससे भी बड़ा पाप है आराधना में बैठकर सुसमाचार एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना और कुछ भी नहीं करना। इस पुस्तक के पढ़ने वालों में भी कुछ ऐसे ही लोग होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आपके लिए मरा। परमेश्वर आप पर दयालु है और आपने उससे ही मुंह मोड़ लिया। परमेश्वर आपको दंड देगा तो आपका दंड अफ्रीका की किसी अन्य जाति से कहीं अधिक कठोर होगा। उनकी चिंता छोड़ दें और यह सोचें कि आपने प्रभु यीशु में परमेश्वर के अनुग्रह के दान के प्रति क्या प्रतिक्रिया दिखाई है। क्या आपने उसके अनुग्रह को स्वीकार किया या नहीं? विलाप गीत 4:7 में लिखा है, उसके कुलीन हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्ज्वल थे। उनकी देह मूंगों से अधिक लाल और उनकी सुंदरता नीलमणि की सी थी। ओह, वे तो अत्यधिक धर्मी थे। आज भी धर्म अच्छा दिखता है। आज नए नए आराधनालय हैं, अच्छी मसीही शिक्षा संस्थाएं हैं, जहां खेलने की पूरी सुविधाएं हैं। दावतों के लिए भी हमारे पास बड़े बड़े कक्ष हैं। देखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार यर्मिया के युग में नाजीर लोग बड़े अच्छे लगते थे। उन्हें सराहा जाता था क्योंकि वे परमेश्वर के लिए मन्नत मानते थे, परंतु यह सब बाहरी दिखावा था। उनका मन उसमें नहीं था। मैं अच्छे अच्छे आराधनालय देखकर बहुत प्रसन्न होता हूँ, परंतु यदि मनुष्य प्रभु यीशु में नई सृष्टि न हो तो यह एक भयानक त्रासदी है। वे अब भी पुराने पापों में लिप्त थे। यहूदा वासियों का यह चित्रण यर्मिया प्रस्तुत करता है। विलाप गीत 4 अध्याय उसके 9 पद में, तलवार के मारे हुए भूख के मारे हुओं से अधिक अच्छे थे, जिनका प्राण खेत की उपज बिना भूख के मारे सूखता जाता है। मेरे मित्रों, यर्मिया यरूशलेम का विध्वंस और प्रजा की मृत्यु देखने के बाद कहता है कि वह मर गया होता तो अच्छा था, क्योंकि बचे हुओं की दशा ऐसी दयनीय थी कि वह उसे देख नहीं पा रहा था। विलाप के 4 अध्याय के 10 पद में लिखा है, दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है, मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। मेरे मित्रों, सन 70 में जब रोम के राजा तीतुस ने यरूशलेम को ध्वंस किया, तब भी यही दुर्दशा हुई थी। भूख के मारे वे अपने ही बच्चों को पकाकर खा रहे थे। हम इसे पाशविक कहेंगे, परंतु माताएं आज गर्भपात करवाती हैं, जो हत्या करना ही है। सिर्फ वे पका नहीं रही हैं, परंतु बच्चे को मार रही हैं। यदि हमें बच्चा नहीं चाहिए तो हमें आत्मसंयम बरतना होगा, ताकि बच्चा का अस्तित्व ही न हो। परमेश्वर ने मनुष्य को संतानोत्पत्ति की क्षमता प्रदान की है, और गर्भधारण के बाद परमेश्वर चाहता है कि बच्चा संसार में आए। गर्भधारण पर बच्चा एक मनुष्य है और गर्भपात एक हत्या है। आज बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, वे बच्चे के लिए तरसते हैं, और जिनके पास बच्चे हैं वे गर्भपात कराते हैं। मेरे मित्रों, यह बहुत ही दुखद बात है। हम ऐसा ना करें, यह परमेश्वर की सृष्टि है। विलाप गीत 4 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, यह उसके भविष्यद्वक्ताओं के पापों और उसके याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है, क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं और याजकों ने सच नहीं कहा, अतः वे हत्या के दोषी हैं। यह परमेश्वर का मूल्यांकन है। परमेश्वर के वचन को न सुनाकर मनुष्य को उद्धार का आश्वासन देने वाला प्रचारक इन्हीं के वर्ग में आता है। यह मैं नहीं, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है कि यदि आप वचन नहीं सुनाते तो आप दोषी हैं। विलाप गीत 4 अध्याय के 16 पद में लिखा है, यहोवा ने अपने कोप से उन्हें तितर बितर किया, वह फिर उन पर दया दृष्टि न करेगा। न तो याचकों का सम्मान हुआ और न पुरनियों पर कुछ अनुग्रह किया गया। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया। यर्मिया परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, वे उसको तुच्छ समझते थे, अतः परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। विलाप गीत की पुस्तक 4 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की बाट जोहते जोहते धुंधली पड़ गई हैं। हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर ताकते रहे जो बचा नहीं सकी। आज के इसराइल को यह सीखना है। 1948 में उनका स्वदेश आना परमेश्वर की ओर से नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से था। यही कारण है कि उस दिन से आज तक वहां शांति नहीं है। युद्ध और युद्ध संकट का वहां अंत नहीं है। उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया और परमेश्वर ने उन्हें स्वदेश में स्थापित नहीं किया है। मेरे प्रियो, कृपया आप मुझे गलत न समझें। मेरे विचार में इसराइल का स्वदेश लौटना एक महान कार्य है। डॉक्टर अल्ब्राइट कहते हैं, मानव इतिहास में यह बेजोड़ है कि 70 वर्ष दासत्व में रहने के बाद कोई देश अपनी राष्ट्रीय जीवन में पुनः स्थापित हो और लगभग 600 वर्षों बाद वही देश 2000 वर्ष विभिन्न देशों में बिखरा रहे और अपनी पहचान से रहित न हो। उस जाति के साथ परमेश्वर का व्यवहार देखकर अनेक जन परमेश्वर की ओर फिरे। परमेश्वर कहता है कि यहूदा की समस्या यह थी कि वह मिस्र से सहायता की आशा लगाए हुए था और मिस्र किसी काम का नहीं था, वह तो उनका शत्रु था। विलाप गीत 4 अध्याय के 20 पद में लिखा है, यहोवा का अभिषिक्त जो हमारा प्राण था और जिसके विषय हमने सोचा था कि अन्य जातियों के बीच हम उसकी शरण में जीवित रहेंगे, वह उनके खोदे हुए गढ़ों में पकड़ा गया। उनका कैसा चित्रण है यह, वे आज अन्य जातियों में बिखरे हुए हैं। विलाप गीत 4 अध्याय के 22 पद में लिखा है, हे सियोन की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड समाप्त हुआ, वह फिर तुझे बंधुआई में ना ले जाएगा। परंतु हे एदोम की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड वह तुझे देगा, वह तेरे पापों को प्रकट कर देगा। दंड देने के बाद परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वह उन्हें वहां फिर से सदा के लिए स्थापित करेगा, जिस देश को देने के लिए उसने अब्राहम से वायदा किया था। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 5 में आते हैं, जिसका विषय है पांचवां शोक गीत। यह पांचवां और अंतिम शोक गीत यर्मिया की प्रार्थना है। आइए हम पढ़ें विलाप गीत 5 अध्याय उसका 1 पद। हे यहोवा, स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है, हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नामधराई को देख। यहूदा का जो सम्मान कभी अन्य जातियों में था वह समाप्त हो गया था और यहाँ पर यर्मिया प्रार्थना करता है। विलाप गीत 5 उसके 11 से 13 पद में लिखा है, सियोन में स्त्रियां और यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट की गई हैं, हाकिम हाथ के बल टांगे गए हैं और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया गया। जवानों को चक्की चलानी पड़ती है और बाल बच्चे लकड़ी का बोझ उठाते हुए लड़खड़ाते हैं। उनकी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके राजकुमारों को लटकाया गया, उनका सब कुछ नष्ट हो गया। उनके जवान दासत्व में ले लिए गए कि राजा नबूकदनेस्सर के लिए काम करें। विलाप गीत 5 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। जी हाँ, उनके मन का आनंद समाप्त हो गया था और सिर्फ कष्ट ही कष्ट उनके जीवन में था। विलाप गीत 5 अध्याय उसके 19 से 21 पद में लिखा हुआ है, परंतु हे यहोवा, तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। तूने क्यों हमको सदा के लिए भुला दिया है और क्यों बहुत काल के लिए हमें छोड़ दिया है? हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। मेरे मित्रों, यह यर्मिया की प्रार्थना अपने लोगों के लिए है। हम इससे शिक्षा लें, देर होने से पहले हम प्रभु की ओर फिर जाएं। वर्षों पूर्व डेनियल वेबस्टर ने कहा था, जो भविष्यवाणी लगती है, यदि जनसमूह में धार्मिक पुस्तकों का वितरण ना हो और मनुष्य परमेश्वर की ओर ना फिरे, तो मैं नहीं जानता कि हमारे देश का क्या होगा। यदि सत्य का प्रसारण ना हो तो चूक होगी, भूल और गलती होगी। यदि परमेश्वर और उसका वचन ग्रहण न किया जाए तो शैतान और उसके काम और अधिक बढ़ेंगे। यदि सुसमाचार प्रचार की वाणी कोने कोने तक न पहुंचे तो भ्रष्ट और व्यभिचारी साहित्य पहुंचेगा। यदि देश की लंबाई चौड़ाई में सुसमाचार के सामर्थ्य का अनुभव न किया गया तो अव्यवस्था, गलत प्रशासन, पतन, दुख, भ्रष्टाचार और अंधकार का राज्य बिना रुकावट सदाकालीन होगा। यह कैसा अद्भुत चित्रण है मेरे प्रियो। आज विलाप गीत हमारे लिए कैसा उत्तम संदेश लाती है, परंतु यह सर्वमान्य नहीं है। यह कैसा दुर्भाग्य है कि हम सुनते नहीं हैं। इसराइल की इस घटना को आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें जो आज्ञा दी उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना और तब उन्हें दंड भोगना पड़ा। आज आपके लिए और मेरे लिए एक समय है कि हम इनसे सीखें और अपने जीवन को जांचें ताकि हम उस बड़े दंड से बच जाएं। ऐसा ना हो कि हम कठिन समय में आए और परमेश्वर से कहें कि मैं नहीं जानता था, मैंने नहीं सुना था। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे इस वचन के द्वारा प्रभु बताना चाहता है कि हम अपने पापों से फिर जाएं, ताकि हम उस जीवन को प्राप्त करें जो प्रभु यीशु मुझे और आपको देना चाहता है, अर्थात पापों से मोक्ष देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है, ताकि हम उसके द्वारा अनंत जीवन, शांति और आनंद को प्राप्त करें। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और इसके साथ ही विलाप गीत की पुस्तक का अध्ययन भी समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और आप अपने जीवन के लिए एक सच्चा निर्णय अवश्य लेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह।